हरे कृष्णा। श्री खदीर वन में आपका सबका स्वागत है। अभी हम खदीर वन में आए, इसको लोकल लैंग्वेज में खायरा कहते हैं। नंदगांव में हमने कुछ बातें की थी, कुछ लोग नहीं थे उसके अंदर। तो भगवान के बालपन में सबसे पहले जन्म जब हुआ था तो वो बीच रात में उनको वसुदेव जी लेकर गए जमुना जी के पार करके गोकुल में, और गोकुल में वो 3 साल और 4 महीने रहे। उसके बाद में वो जब राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया तो सभी बड़े ग्वाल बालों ने, गोपों ने चर्चा किया कि यहाँ पर अभी रहना सुरक्षित नहीं है, तो हमें सुरक्षित जगह जाना चाहिए। जमुना किनारे गए थे नंदगांव से पहले पुत्र की प्राप्ति के लिए। जमुना जी किनारे रहकर पुत्र प्राप्ति हुई, संकट बढ़े तो फिर चर्चा किया उसी कृष्ण के सुरक्षा के लिए। प्रेम के वश उन्होंने गोकुल छोड़कर वो नंदगांव में आए। राजा रानी के पिताजी उनको लेकर बरसाने आए, वो भी बरसाने से पहले रावल गए थे। फिर राजा रानी का जन्म हुआ। फिर एक साथ वृषभानु महाराज, नंद मंद महाराज मित्र हैं एक दूसरे के, चर्चा किया वो सब लोग गोकुल से नंदगांव और रावल से बरसाना गए। उसके बाद भगवान को गाय के बछड़ों का जिम्मेदारी दिया गया, गौचारण। ब्रजवासियों के जीवन में एक बहुत बड़ा रेगुलेशन है ये। नंद महाराज तो महाराज हैं, राजा हैं स्वयं, विश्वानु महाराज भी राजा है, लेकिन उनका हर बालक जो है वो गौचारण करने बिना ब्रजवासी नहीं कहलाता। थोड़ा आवाज को जरा देखो क्या हो रहा है। तो इतने बड़े राजा होने के बाद भी नंद महाराज के पास हजारों सेवक थे, लेकिन वो सेवकों के बजाय स्वयं अपने पुत्र, प्रिय पुत्र कृष्ण और बलराम जो राजकुमार थे, उनको भी गाय चराना सिखाया उन्होंने। आवाज आ रही सबको? कम आ रही? बोल रहे बढ़ा दो। तो ये ब्रजवासियों की प्रथा है। आज भी ब्रजवासी जब किसी कारण बाहर देश रहते हैं तो 50 साल के बाद में वापस ब्रज में आते हैं, और आज के ब्रजवासी भी गाय चराते हैं। तभी उनको ब्रजवासी की जो पदवी है वो कायम रहती है, तो ब्रजवासी नहीं कहला सकते उनको। गौचारण ही ब्रजवासियों का सबसे प्रेममय व्यवसाय है। ऐसा नहीं कि उनकी उपजीविका के लिए जरूरी है इसलिए वो करते हैं, वो तो करते हैं ठीक है, लेकिन उपजीविका के ज़्यादा गौ पर वो प्रेम करते हैं, और गौ चराना वो अपने आप को धन्य समझते हैं उसके अंदर। गौ को लेकर जंगल में चराना, घास खिलाना, उनकी सेवा करना, ये बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है ब्रज की। गौ की सेवा, गौ को धोना, नहलाना, उसके गोबर को इकट्ठा करना, गौमूत्र निकालना, गौ को मालिश करना, गौ की सेवा जो भगवान को बड़ा प्रसन्न करती है। जो गौ को प्रसन्न करता है वो भगवान को प्रसन्न करता है। गौ सबसे भगवान को प्रिय है, इसलिए बचपन में ही छोटे से उम्र में उनको बछड़ों का भार दिया। वत्स है ना, गाय के बछड़ों को वत्स कहते हैं, गो वत्स। तो जब तक उन्होंने वत्सों की जिम्मेदारी ली थी अपने हाथ में, तब तक उनको वत्सपाल कहा गया। उसके बाद जब बड़े गाय की जिम्मेदारी दी गई तो वो गोपाल बन गए। हाँ, तो वत्सपाल की लीला जो है वो 5 साल तक चली। उम्र के 5 साल तक वत्सपाल बने रहे हो। 5 साल जब जन्म के 5 साल पूरे हो गए तो गोपाष्टमी जब आई, कार्तिक में आती है वो, तो गोपाष्टमी के दिन जो बितने में बड़े गाय थे 9 लाख से ऊपर थे, उनका जिम्मेदारी उनको दिया गया गौचारण का। तो छोटे गायों का जो बच्चों का जो चलने का नियम था वो ऐसा था कि नंद भवन के ऊपर चले गए तो वहाँ से जितना दिखाई पड़ता है वहीं तक जाएंगे, वो उसके आगे नहीं जाएंगे। कभी भी अगर मन में शंका हुई तो ऊपर जाके देखेंगे किस तरफ है, दिखाई पड़ेंगे सुरक्षित है, बस उसके आगे जाना नहीं उनको, उनका वो लिमिट है, बॉर्डर है। तो वत्सपाल लीला में यहीं आसपास लीला किया है, तो यहाँ की जो लीला है वो वत्सपाल लीला के अंदर आती है। जैसे कि वो जब बकासुर का वध हुआ है यहाँ पर खदीर वन में, वत्सपाल लीला के अंतर्गत हुआ है, और शास्त्र में पुराणों में इसका उल्लेख आता है कि ये जो खदीर वन है, खदीर का मतलब कत्था, आप जानते हैं ना, वो लाल रंग जो देता है ना पान में, जो चूना लगाते हैं और पान में लगाते हैं वो लाल लाल हो जाता है, उसको कत्था कहते हैं। कत्था, वो कत्था का अलग नाम खदीर है, और ये खदीर जो है वो गले के लिए बहुत बढ़िया है। जब गले में कुछ होते ना, कुछ खर्राश होती है, तो खदीर वटी देते हैं उसको चूसने के लिए, और भी बहुत उसके उपयोगी उद्देश्य हैं। यहाँ पर खदीर यानी कत्था के वृक्ष हुआ करते थे, इसलिए उसका नाम खदीर वन है। और नंद बाबा के जो बड़े भाई हैं, उपनंद सबसे बड़े भाई हैं, परजन्य महाराज के ये पांच पुत्र हुए हैं, उपनंद, अभिनंद, नंद, सन नंद और सनत नंदन चाचा, पांच भाई। बीच वाले नंद महाराज सबसे बड़े उपनंद, तो उपनंद की पत्नी का नाम प्रभावती है। तो उपनंद बाबा की यहाँ पर खिड़क थी, खिड़क मतलब यहाँ पर उनके गाय आते थे, जल पीते थे, यहाँ पर उनका जगह था। फिर भी कृष्ण भगवान ने ये जो वन है, ये उनकी बाल लीलाओं में बहुत ही उनका आनंद लिया इस वन में। तो ऐसे ही एक बार वो घूमते घामते बालक बच्चों को लेकर, सब बालक भी बच्चे थे उनके साथ में, जो बालक थे वो भी छोटे थे, ये भी छोटे हैं और बछड़े भी छोटे हैं, सबको लेकर यहाँ पर घूमने आए। यहाँ पर तालाब में ये माधव सरोवर है, इसका वर्णन भी पुराणों में आता है, माधव सरोवर। और यहाँ पर आए, जल बल पिलाया, तो क्या देखा, एकदम भयंकर वस्तु देखा उन्होंने, सब डर गए देख के। एक बगुला बैठा था यहाँ पर, वो इतना विशाल था जैसे कि मानो सफेद रंग का पहाड़ हो कोई, जो आसमान को छू रहा है। ऐसे बड़े बड़े मजबूत उसके पैर थे, खंभे के समान, और उसकी चोंच जो थी वो वज्र से भी कठिन थी। उसका सर जो था वो बादल में था, इतना विशाल बगुला जो है एकदम भयंकर दृष्टि से सबको देख रहा था, घूर रहा था ऐसे, सब ग्वाल वालों को देखा। और कुछ भी समझ में आने के पहले, डर तो गए थे पहले, वो कुछ भी विचार या कुछ सोच ले उसके पहले ही वो बगुला जो है अपनी चोंच खोलता है और कृष्ण को खा जाता है, निगल लेता है पूरा। तो सब ग्वाल बाल डर जाते, अरे खा लिया खा लिया। तो क्या बोलते हैं ब्रजवासी भाषा में, अरे खाए रोए खाए रोए खाए रोए, अरे खा रहा है खा रहा है खा रहा है, इसलिए इस गांव का नाम खायरो खायरा पड़ गया है। और सब ब्रजवासी लोगों ने यहाँ पर चीख लगाई थी, अरे खाए रोए खाए रोए, अरे वहां को खाए रोए, बालक को खाए रोए, कन्हैया को खाए रोए। तो अभी क्या होगा, अभी देखो उनके प्राणनाथ जो है, उनके जीवन प्राण थे कन्हैया जी, चले गए बगला के मुंह में, मतलब गए ना, खत्म हो गए। सब रोने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे। देवता भी जो है वो गए थे ना शिव सागर पे प्रार्थना करने के लिए, जब पृथ्वी माता पर कंस के द्वारा उसके सहे जितने भी सखा संबंधी थे उसके, राक्षस लोग, उनके द्वारा आतंक बढ़ा, तो पृथ्वी बहुत परेशान हो गई थी। तो पृथ्वी गई थी ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी गए देवताओं को लेकर शिव सागर में किनारे में गए, वहां पर उन्होंने प्रार्थना किया था। तो देवताओं की उम्मीद थी ना कि भगवान आएंगे और राक्षस का संहार करेंगे। अभी जो कंस का वध भी नहीं हुआ है और गया पेट के अंदर बगले के, सब आशा खत्म हो गई ना, एकदम डेस्परेट हो गया एकदम वो। सब देवता लोग वहां आकाश में मांगे कि कभी इससे युद्ध करना पड़ेगा। तो बगुला जो है उसके सामने सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, हाँ सबसे पहले इंद्र आए, और इंद्र ने अपना वज्र का प्रहार किया उसके ऊपर। अब जानते हैं ना, ये सब जो अस्त्र का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, एक एक अस्त्र जो है वो उसको तोड़ नहीं है कोई, अपराजेय अस्त्र है सब ये। इंद्र का वज्र है, यम का दंड है, ब्रह्म का दंड है, शिव जी का त्रिशूल है, हाँ एक एक ऐसे अस्त्र है जिसका कोई तोड़ नहीं है, कोई उसको काट नहीं सकता है। तो सबसे पहले देवेंद्र इंद्र ने जो है वज्र फेंका, वज्र फेंकने से दो घड़ी तक ये मूर्छित रहा। दो घड़ी मतलब कितना होता है, चार घंटे, चार घंटे तक ये मूर्छित रहा, लेकिन फिर उठ गया, कुछ नहीं हुआ उसको। फिर ब्रह्मा जी आए, उन्होंने अपना पाश फेंका, ब्रह्मा जी दंड फेंका अपना, दंड फेंकने से भी ये नहीं, वज्र फेंकने से ये धरती पर गिर गया, फिर उठ गया, वज्र से मूर्छित नहीं हुआ, वज्र से धरती पर गिर गया और फिर उठ गया। फिर गर्जना करने लगा मेघ के समान, तो ब्रह्मा जी ने अपना दंड फेंका, ब्रह्मा जी के दंड से दो घड़ी तक मूर्छित रहा, लगा हो गया चलो खत्म हो गया काम, दो घंटे फिर खड़ा हो गया, फिर जोर से चिल्लाने लगा, आवाज करने लगा, सबको डराने लगा। तो फिर वहां से शिवजी महाराज आए त्रिशूल लेकर और अपने त्रिशूल अस्त्र से उन्होंने प्रहार किया, तो एक पंख जो है उसका कट गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ उसको, शिवजी को भागना पड़ा। त्रिशूल का भी परिणाम केवल उसका पंख काटने तक हुआ। उसके बाद में वायुदेव आए और वायुदेव ने, आप जानते हैं वायुअस्त्र क्या होता है, वायुअस्त्र मतलब पूरी पृथ्वी उड़ सकती है हवा में, इतनी गति होती है उसके अंदर, किसी को उड़ाने के लिए वायुअस्त्र का उपयोग किया जाता है, वायुदेव का सबसे भयंकर अस्त्र है वो। तो ऐसा लिखा है गर्ग संहिता में कि वायुअस्त्र का प्रभाव से वो केवल 2 गज हवा में उड़ा और फिर जमीन पे आ गया, कुछ भी नहीं हुआ उसको। फिर कुबेर जी आए तलवार लेकर और युद्ध करने के लिए, कुछ नहीं हुआ, कुबेर जी का तलवार अस्त्र है। फिर अग्नि आए और अग्नि ने अग्नियास्त्र छोड़ा, अग्नियास्त्र मतलब अग्नि, जिससे अग्नियास्त्र से प्रलय हो सकता है, सब निर्माण जो भगवान का है सृष्टि जल की खाक हो सकती है। तो अग्नियास्त्र से क्या हुआ, उसके केवल रोम जले, ओनली सम हेयर ऑन द बॉडी इट गॉट बर्न्ड। फिर महापराक्रमी चंड पराक्रमी सहस्त्र घोड़े को लेकर जो रथ पे सवार होकर चलते हैं सूर्य भगवान विवस्वान, वो आए, उन्होंने 100 तीखे बाण मारे उसके अंदर, वो केवल उसके पाख के अंदर धस गए पर कुछ नहीं हुआ उसको, केवल जाके उधर ब्लॉक हो गए, बस एक पंख को बचे हुए ब्लॉक कर दिया उन्होंने। फिर हाँ मेरे, फिर उसके बाद में मैं थोड़ा गलती कर रहा हूँ क्योंकि बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो फिर कुबेर जी आते हैं तलवार लेकर और तलवार से जब युद्ध होता है तो दूसरी पाख उसकी काट देते हैं। उसके बाद चंद्र आते हैं क्योंकि अग्नियास्त्र से केवल रोम जलते हैं, तो चंद्र का निहारास्त्र है फ्रीजिंग कोल्ड, मतलब एकदम इतना ठंड हो जाती है कि ठंड से ही आदमी मर जाता है, मे बी -45 -60 होगा तो कैसे होगा, तो ये तो उससे भयंकर अस्त्र है, पूरा जीवन को एकदम शिथिल कर देता है, पूरा पूरा मूवमेंट बंद हो जाता है। तो निहारास्त्र से ये केवल कुछ समय के लिए ठंडा हो जाता है, फिर ऊपर से गर्दना करके उठता है। उसके बाद देवी आती है भद्रकाली, महावेगवती देवी आती है और अपनी शक्ति का प्रहार करती है, तो शक्ति का प्रहार करने के बाद में कुछ समय के लिए फिर बेहोश हो जाता है और फिर जगता है, हर समय जोर से गर्जना करके उठता है, फिर चैलेंज करता है देवताओं को। और आखिर में स्कंद आते हैं, स्कंद यानी कि देवताओं के सेनापति है, वो अपनी अपनी शक्ति का प्रहार करते हैं और उससे एक टांग उसकी टूटती है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है, वो मरता नहीं है। इस प्रकार से सब प्रकार के देवता आते हैं, जितने भी देवता हैं, सोम यानी कि चंद्रदेव, वरुण देव, वरुण जी, वरुण जी का बताना भूल गया मैं, वरुण जी आते हैं, वरुण का अस्त्र कौन सा है, यस वरुण पाश, जिससे वरुण पाश से बलि महाराज को बांधा गया था, है ना, उस वरुण पाश से बांध कर उनको खींच के लेके गए थे अरेस्ट करके। तो ये वरुण पाश मतलब अल्टीमेट वेपन है। तो ये वरुण पाश डालकर ये कहते हैं 2 मील तक उसको घसीट के ले जा सके, उसके बाद वरुण पाश भी फेल हो गया, वरुण पाश भी कुछ नहीं कर पाया। और उसके बाद में इसको इतना गुस्सा आया कि देवता आके अपना अस्त्र का प्रहार कर रहा है, इसने सब इतना जोर से गर्जना किया और सबके ऊपर एक साथ में हमला किया, और आकाश में ऐसा दृश्य था कि अकेला बगुला बकासुर और सारे देवता सब दिशा में भाग रहे हैं, सबको खदेड़ दे रहा है वो, अकेला आदमी जो है, अकेला राक्षस है बकासुर, और सब राक्षस, सब देवता जितने भी आकाश में हैं अपने शस्त्र लेकर खड़े हैं, सब भाग रहे हैं। कितनी शक्ति होगी उसके अंदर, देखो आप कितनी शक्ति होगी, इतने बलशाली देवताओं के प्रभाव से भी वो टस से मस नहीं हुआ, बड़ा बहुत क्षति हो गई, थोड़ा नुकसान हो गया उसका, लेकिन उसका हौसला और उसकी वीरता को यह परास्त नहीं कर सके, और सभी देवी देवताओं को भागना पड़ा वहां से। तो फिर सप्तऋषि जो है आकाश में, जितने महात्मा है, वशिष्ठ मुनि, भारद्वाज मुनि, अंगिरा मुनि, अगस्त्य मुनि, इतने मुनि है, इतने महात्मा है, जितने संत है, और सभी देवताओं ने मिलकर फिर भगवान को प्रार्थना किया, बचाओ कहाँ हुआ। तो भगवान ने सोचा अभी सब हार गए हैं, सब ने अपना अपना उपाय कर लिया है, कुछ नहीं हो रहा है, मैं ही कुछ करता हूँ। तब तक वो शांत थे भगवान बगुले के पेट में, फिर वहां से उन्होंने अपना महाविस्तार किया और अपनी उष्णता को बढ़ाया, इंक्रीज द हीट ऑफ हिज बॉडी, और शरीर से भी विस्तार कर दिया, तो गले में आके अटके वो, तभी वो एकदम बिल्कुल परेशान हो गया और उसने भगवान को निगल दिया बाहर, उगल दिया, सॉरी निगल नहीं दिया, बाहर निकाल दिया, वो सहन नहीं हुआ गर्मी उसको, तो भगवान तुरंत बाहर गए, बाहर आते तुरंत झपट के पकड़ने का कोशिश किया भगवान को, फिर चोंच में पकड़ के खाने का कोशिश किया, तो भगवान झट से उसके पीछे गए, उसकी पूंछ को पकड़ा और उसको हवा में गोल 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 घुमाया और जमीन पटक दिया। कुछ देर बाद वो बहुत परेशान हो गया, दर्द से वो हाँ बेहाल हो गया, फिर उठ गया, फिर भगवान पे उसने हमला किया। अब देखो ग्वाल बाल सब देख रहे हैं, हाँ बड़े बड़े लोग देवता आकर युद्ध कर रहे हैं, ये बगुला उसको टस से मस नहीं हो रहा है, उनकी क्या अवस्था होगी उस समय, क्या होगा अभी कन्हैया को, क्या होगा, जीतेंगे हारेंगे, जीतेंगे हारेंगे, अब तक तो जीते आए हुए, पता नहीं एक बार तो निगल भी गया था उनको, इतनी चिंता में थे वो भगवान के लिए। अब भगवान के सामने युद्ध कर रहे हैं, बहुत घनघोर युद्ध होता है। अब इस वक्त क्या हो रहा है, सब हारे हुए देवता जो वो देख रहे हैं इसे, अचंभित होकर देख रहे हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, भगवान मार पाएंगे उसको, हम सब लोग मिलकर भी नहीं मार पाए। तो भगवान ने पूंछ में पकड़ कर उसको घुमाया और पटका, फिर वो जब आया तो फिर चोंच खोल के आया उसको निकलने के लिए, तो झट से भगवान ने एक चोंच पर पाँव रखा, एक चोंच पे हाथ रखा, तुरंत उसको जैसे हाथी किसी पेड़ की शाखा को फाड़ देता है वैसे वो फाड़ कर उसको मार दिया भगवान ने। बोलो कन्हैया लाल की। तो ऐसे जिन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर, पूरी शक्ति अस्त्र लगाकर प्रयत्न किया था, वो कुछ नहीं कर पाए, और भगवान ने बिना किसी शस्त्र अस्त्र के केवल हाथों से उसकी चोंच को फाड़ कर उसका मृत्यु कर दिया। और एक अद्भुत चीज हुई, जैसे ही इसका चोंच फटकर मृत्यु हो गई तो शरीर से उसके एक ज्योति निकली, दिव्य ज्योति, और वो भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई। तो सब लोगों को आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या चीज है। तो ये जो कथा है, ये जो मिथिला नरेश है, बाहुलाश्व, इनके घर भगवान कृष्ण गए थे। हाँ, आप जब कृष्ण के दशम स्कंद की लीला पढ़ेंगे, दशम स्कंद में बहुत भगवान की कथाएं हैं, 90 कथाएं हैं भगवान की, उसमें कथा आती है कि भगवान मिथिला, जहाँ पर सीता जी का जन्म हुआ था ना मिथिला, इसलिए उनका नाम मैथिली है। तो मिथिला नरेश थे, विदेह राज भी कहते हैं उनको, उनका नाम जनक राजा था। तो उसी राज, उसी परंपरा में राजा बहुलाश्व हुए हैं। जब ही राम जी की लीला हुई तभी जनक राजा थे, जब उनके वंशज आगे आगे बढ़े और कृष्ण लीला शुरू हुई तभी वहाँ पर बहुलाश्व थे। तो बहुलाश्व और श्रुतदेव, इन दोनों को मिलने के लिए भगवान कृष्ण गए थे मिथिला नगरी में। एक बहुत गरीब बेचारा ब्राह्मण था, एकदम गरीब, और एक राजा थे, राजा बहुलाश्व, दो रूप बनकर गए और दोनों के घर में उन्होंने आदर आतिथ्य का स्वीकार किया, दोनों पर कृपा किया। तो वो बहुलाश्व राजा जो हैं वो नारद मुनि के मुख से लीला सुन रहे भगवान की, गर्ग संहिता यानी नारद मुनि जो राजा बहुलाश्व को बताया उन्होंने भगवान के बारे में, वो सब गर्ग मुनि ने संकलित किया और उसको गर्ग संहिता के रूप में प्रकाशित किया। तो राजा बहुलाश्व सुन रहे हैं नारद मुनि के मुख से कि उनके शरीर से ज्योति निकली और वो कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई। तो कृष्ण पूछा, ऐसे कैसे हुआ, ये कौन सा महान तपस्वी था कि ऐसे उसका अंत में ऐसी गति प्राप्त हुई उसको। तो नारद मुनि ने उत्तर दिया कि एक हयग्रीव नाम का राक्षस था सतयुग में। हाँ, जो लोग सो रहे हैं वो जग जाओ, वो टेक के आराम से सो रहे हैं, देखो प्रफुल्ल पाटिल, जगो जगो जरा आराम से बैठो। हाँ, बकासुर का वध हो गया है अभी, अभी कहाँ से आए थे बकासुर वो बता रहे हैं। तो हयग्रीव नाम का राक्षस था, उसका शिष्ट था, वो घोड़े का था, तो उसने तपस्या किया था और भगवान से वरदान मांग लिया था कि जो मुझ जैसा होगा, मनुष्य शरीर वाला और घोड़े के सिर वाला, वही मेरा वरदान कर, वही मुझसे मुझे मार सकता है, ऐसे वरदान दो। क्योंकि तो उसको यकीन था कि ऐसे कोई भगवान के निर्माण में ऐसे कोई योनि नहीं है, तो मैं तो अमर हो जाऊंगा, भगवान के निर्माण में ऐसे कोई जीव ही नहीं बनाया भगवान ने जिसका सर घोड़े का हो और शरीर मानवों का हो। तो भगवान ने स्वयं वो रूप लिया सत्ययुग में, हयग्रीव स्वयं भगवान बने हयग्रीव। तो उस हयग्रीव अवतार ने राक्षस हयग्रीव को मार दिया। उसका बेटा था, उसका नाम था उत्कल राक्षस, बहुत पराक्रमी था वो, इतना पराक्रमी था कि सभी देवताओं से सभी लोक उसने छीन लिए थे, इंद्र से इंद्र लोक, वायु से वायु लोक, वरुण से वरुण लोक, जितने भी देवताओं के जितने महान महान लोक थे, इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स, वो सब उसने कब्जा कर लिया था और सबका, पृथ्वी पर का देवताओं के लोगों का सबका हरण करके उसने 100 वर्ष तक उसका भोग लिया। बहुत पराक्रमी था वो, बहुत सुंदर भी था, बहुत वीरता थी उसके अंदर, राक्षस होते हुए भी तपस्या का बल था उसके अंदर। तो उस उत्कल, जैसे किसी के पास अभी अहंकार होता है, बल होता है, तो अहंकार तो उत्पन्न होता है ना। अगर कोई बलवान हो तो बिना अहंकार के रहता नहीं है। अरे आप कुत्ते को भी अगर शेर का चमड़ी पहनाओगे ना तो भी उसको अहंकार होता है, मैं भी शेर बन गया है ना। जैसे कि अभी कोई बड़े बस का ड्राइवर है और कोई बैलगाड़ी का ड्राइवर है और कोई रिक्शा का ड्राइवर है, वो उसको भी उसका अहंकार होता है। जो बस वाला होता है वो है हटे बाजू से, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, लेकिन कोई बस में बैठा है और ड्राइविंग कर रहा है तो उसको एक अपना अहंकार होता है। और हमारा जो एम्बुलेंस है उसके अंदर सायरन होता है, सायरन तो उसको उसका एक होता है कि मैं बजाऊंगा तो कहीं से भी निकल जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तो हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं, लेकिन गाड़ी का कैसा साइज है और क्या कीमत है उसके ऊपर उसका अलग अलग अहंकार होता है। और ड्राइवर अगर समझो वो मर्सिडीज का ड्राइवर होगा तो भी उसका एक अपना रुबा होता है। हाँ, और कुछ भी ना होता है भी रुबा होता है आदमी को, पता है ना। अरे आप दादर में जाओगे और वो जो वहाँ भिखारी बैठते हैं उसको भी अपने इलाके का गर्व होता है, उसे तो हमारे इलाके में आके भीख नहीं मांगना, उस ब्रिज पे जाओ। और शादी में अपनी लड़की को जब ब्याहते हैं तो जमाई को अपना वो एरिया दान दे देते हैं, लाभी तुम भीख मांगो। ये आप हंस रहे हैं, हकीकत है, क्योंकि उसके पास है ही नहीं कुछ, तो वो अपना इलाके को अपना एरिया समझता है कि ये मेरा मालिक का एरिया, यहाँ पर भीख मांगता हूँ मैं। तो शादी होने के बाद दहेज में अपने जमाई को देता है, तो वो भी मैं यहाँ बंद करूँगा, अभी तुम चालू करो। तो मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब आपको, ये हकीकत तो है ही, लेकिन साथ में बता रहा हूँ कि कुछ भी ना होते हुए भी आदमी को अहंकार होता है। ये सबसे बड़ी समझने वाली बात, अहंकार को कोई कारण नहीं रहता है, लगता नहीं है। इवन इट इज सेड दैट इवन अ बेगर इज अ प्राउड ऑफ हिज पेनी। तो वैसे अहंकार तो सबसे बड़ी भयंकर चीज है। संत लोग कहते हैं कि अहंकार की वजह से भगवान से हम बिछड़े हुए हैं। अहंकार जीव को भगवान से बहुत दूर भेज देता है, और सब कुछ है लेकिन अहंकार नहीं है तो हम बिल्कुल भगवान के पास में, तो हृदय में ही है, कहीं दूर नहीं है। लेकिन अहंकार वैसी वस्तु है जो भगवान से हमको अनंत दूरी तक फेंक देती है। सब कुछ सद्गुण है हमारे अंदर, ज्ञान है, भक्ति सब है, लेकिन साथ में अहंकार होगा और अहंकार को हम नहीं कैंसिल कर सकते हैं तो फिर हम भगवान से बहुत दूर हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, हमारे गुरुदेव बार बार लगातार बताते रहते हैं, तना दपि सुनि चेना, तृण से भी नम्र बनो, पेड़ से भी अधिक सहनशील बनो, अपने लिए मान की अपेक्षा मत करो, दूसरों को सब मान दो, वही भगवान के पास भगवान की अनुभूति कर सकता है। ये तो इतना बलशाली था ही राक्षस, सब राक्षसों को सब देवताओं को परास्त किया था, सब डरते थे, सब गुफा में छुपे हुए थे इसके डर के मारे। तो ऐसे मदमत्त होकर वो एक बार एक वन में आया, वहां पर महासिद्ध जो मुनि थे, जाजली मुनि उनका निवास था, और वो इतने सिद्ध मुनि थे कि मुनियों का संग जो है ना बहुत पावरफुल होता है। कैसे कि केवल मुनि ऋषि भक्त महात्मा जन जो है उनके पास जाते ही मन की सारी चिंताएं नष्ट हो जाती। हमने भी कई बार अर्पण किया, अनुभव किया इसका, कई कुछ समस्या होती है तो हम जाते हैं गुरुजी के पास मिलने के लिए कि गुरुजी को बताएंगे और उसका कुछ समाधान निकालेंगे, तो एकदम उनके संग में जाते हैं और बैठते हैं तो क्या पूछे, अभी क्या पूछने की जरूरत है, कोई चिंता नहीं, ऐसा लगता है एकदम अचानक हम चिंताविहीन हो जाते हैं। वो संत महाराज महात्मा के आभा का मतलब चेतना का प्रभाव होता है, संत के सानिध्य में जाते ही सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, संत चिंता हरण होते हैं, उनका भक्ति का और प्रेम का इतना प्रभाव होता है भगवान के लिए, भगवान के हृदय में निवास करते हैं, उनके पास जाते ही सब दुख नष्ट हो जाते हैं, टेम्परेरली क्यों ना हो, फिर जाते ही दूर जाते हैं वापस वो अपने हावे हो जाते हैं। तो वैसे ही जाजली मुनि जहां पर निवास कर रहे थे उनके भक्ति और प्रेम की वजह से सभी चराचर में मित्रता थी, कोई प्राणी किसी का शत्रु नहीं था, सब हाथी शेर गले मिल रहे थे, कोई किसी का वध नहीं कर रहा है, सब शांति से निवास, सहजीवन, सहकार्य, सहयोग, प्रेम, सब ऐसा था वातावरण। तो उन्होंने बहुत ताला बना के रखे थे, उसमें पंछलियाँ थी, किसमें पंछी थे, सब अपने अपने आराम से रह रहे हैं, प्रेम से महात्मा जी रह रहे हैं। तो ये आके एक कुंड के किनारे बैठता है, उसके पास एक लकड़ी की ऐसी बांसुरी जैसी एक लकड़ी थी जिसमें होल था, तो वो उसमें जल में डाल दिया मछली कैसे करती है ना, जहाँ पर भी प्रवेश करके देखते हैं क्या है उसके अंदर, तो सब मछलियाँ उसके अंदर आती आने लगी। तो मछली आते ही उसको निकाल के वो खाने लगा ऐसे, फिर डाल दिया पानी के अंदर, फिर कुछ मछली आ गई, फिर पानी के अंदर डाल दिया, मुँह में डाल दिया, खाना चालू कर दिया उसने। तो मुनि जी आए, बोले हमारे यहाँ पर कोई ऐसे कुछ हत्या वत्या करता नहीं कोई, तुम ये काम बंद कर दो, तुम गलत काम कर रहे हो, तुम यहाँ पर जो स्वच्छता से प्रेम से जीव जी रहे हैं उनकी हत्या कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो, बंद करो अपना ये काम। लेकिन उसको अपने बल का बहुत मन था, उसने मुनि को दुर्लक्ष कर दिया और वापस बांसुरी डाली, मछली आया, खा गया मछली को। तो मुनि लोग जो होते हैं ना, साधु लोग होते हैं, वो कभी भी हमेशा हर समय हर व्यक्ति का कल्याण का सोचते हैं। जैसे कि जब भी नारद मुनि गुजर रहे थे तो कुबेर के पुत्र थे ना नल कुबेर मणिग्रीव, वो नंगे नहा रहे थे सरोवर में, बहुत स्त्रियों के साथ में आनंद ले रहे थे, शराब के नशे में चूर होकर, बल के चूर नशे में, बल के मद में चूर होकर वहाँ पर स्नान कर रहे थे। तो नारद मुनि वहाँ से आए तो सभी जो स्त्रियाँ थी वो इतने नशे में नहीं थी, वो तुरंत अपने अपने वस्त्र पहन कर निकल गई, भाग गई वो लज्जा और मर्यादा और सम्मान के रूप में। लेकिन ये उनकी नशा इतनी बड़ी हुई थी कि उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया कि नारद मुनि जी आ रहे हैं, महात्मा जी आ रहे हैं, वंदन करना चाहिए। ऐसे ही नंगे रूप में शराब के नशे में, मदरा नशे में मस्त रहे। तो नारद मुनि देखो कुबेर के पुत्र ही, हाँ देवताओं के ट्रेजरर है वो, कोषाध्यक्ष हैं, इतने बड़े व्यक्ति के ये बिगड़े हुए लड़के हैं, ये ऐसे ही रहेंगे तो क्या कल्याण होगा उनका। इसलिए वो शाप देते हैं उनको कि तुम नंगे होने को अच्छा लगता है, कपड़े निकाल के पेट बनाओ, पेट कभी कपड़े पहनते हैं क्या? हम लोग कुत्ता बिल्ली को कपड़ा पहनते हैं, कभी टोपी पहनते हैं, कभी गॉगल पहनते हैं, कभी कुछ कपड़ा पहनते हैं, कभी चड्डी पहन देते हैं उनको, हाँ पालतू कुत्तों को पहनते हैं। लेकिन पेड़ को कभी देखा आपने किसी ने प्रेम से कपड़ा पहना हुआ है? कभी देखा है? कभी भी नहीं। तो याद रखना, जो व्यक्ति फैशन के तौर पर औरत या आदमी अपने शरीर की नुमाइश करता है ना, उसको अगले जन्म में पेड़ बनना पड़ता है। तो हमारे बॉलीवुड हॉलीवुड के स्टार्स जो है ना, वो सब एंड में जाके वुड बनने वाले हैं। हाँ, अपार्ट फ्रॉम द जोक, दिस इज अ फैक्ट, रिमेंबर दिस। क्योंकि बॉलीवुड हॉलीवुड जाते ही आदमी को क्या लगता है, कम से कम कपड़े पहनने चाहिए, तो सबसे ज्यादा महंगे होते हैं। ये भी एक विरोधाभास जीवन का है हमारा। हाँ, द मिनिमम साइज ऑफ क्लोथ्स, मिनिमम क्लॉथ इज यूज्ड द मोस्ट कॉस्टली, क्योंकि लगता है कि जिसमें से अधिक शरीर का दर्शन हो सबसे महंगा होता है, और वो पहन के अपने आप को धन्य समझते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जो शरीर की नुमाइश करते हैं मनुष्य बनने के बाद, उनको पेड़ बनना पड़ता है, फिर कपड़े की कोई जरूरत नहीं है, कुछ सस्ता महंगा का सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसे नारद मुनि ने शाप दिया उनको, लेकिन जब वो पेड़ के शरीर में प्राप्त हुए तो उनको एकदम अहंकार सब दिखा ना, अरे क्या हो गया, तो सुंदर राजा था मैं, बलशाली था, सिद्ध पुरुष था, शक्तिशाली था, देवताओं को परास्त करने वाला था, अभी अचानक पेड़ बन गया तो क्या होगा, तो एकदम अहंकार चूर हो गया उनका। तो विनती करने लगे वो, तो साधु महाराज तो उनका कल्याण करने के लिए बैठे, बोले कोई बात नहीं, पेड़ तो बनोगे आप, लेकिन अभी नंद महाराज के आंगन में पेड़ बनोगे, गोकुल में, इतना भाग्य होगा तुम्हारा कि तुम पेड़ में रूप में खड़े होकर उनकी बाल लीलाओं को देखेंगे और यथावकाश तुम्हारा भगवान उद्धार कर देंगे। तो भगवान का पूरा बाल लीला जो है ना, वो सभी लीलाओं में सर्व आकर्षक है। अरे राक्षसों के, राक्षस को मारा, उन्हें बड़े होकर मारा, हस्तिनापुर में युद्ध किया, राजनीति किया, बड़े 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 काम किए उन्होंने, लेकिन वो इतने आकर्षक नहीं है जितने उनकी माखन चोरी और गोबर गोबर में गोमूत्र में खेलना, और वो सब जो तुतले तुतले बोल मूलना और चलते चलते गिर जाना, और माँ से भाषा सीखना, जो सब वेद को जानते हैं वो माता से अबकड़ा सीख रहे हैं, जो सब दुनिया को चलाते हैं वो माँ के हाथ पकड़ के चलने को सीख रहे हैं, ऐसी लीला करते हैं ना, बहुत चटपटी और बहुत मनमोहक होती है, वो सबका दर्शन किया। तो उनको जो शाप दिया गया पेड़ बनने का, वो शाप था कि वरदान था? वरदान था, अंतिम था, सब वरदान में रूपांतर होता है। तो वैसे जाजली में देख रहे हैं कि बड़ा गर्व है इसको अपने बल पर, और ऐसे ही मद मत होकर जीवों की हत्या कर रहा है। भाई मछली खाने की इच्छा है, जा तू बगुला बन जा, तो बगुला क्या करता है, पानी में खड़ा रहता है योगी की तरह, हाँ स्थिर एकदम, हिलता भी नहीं है। तो क्या ध्यान है, देखो कितना बड़ा ध्यान लगाया है, लेकिन ध्यान किस पे लगाया है, मछली पर, कब आएगी, कब पकड़ूंगा, कब खाऊंगा, झट से पकड़ के मुंह में डाल देता है, समझता भी नहीं कभी पकड़ता है। तो बगुले का एक उदाहरण वो है, और एक उदाहरण ऐसा भी दिया जाता है कि बगुला का हमको थोड़ा प्रेरणा लेनी चाहिए बगुले का, क्योंकि वो जल में खड़ा रहकर केवल मछली को देखता है, किधर भी देखता नहीं। जैसे हमारा भी ध्यान केवल भगवान पे होना चाहिए और कुछ दिखना नहीं चाहिए। जैसे अर्जुन को केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही थी, कुछ नहीं दिखा रहा था, पेड़ के पन्ने और पेड़ की शाखा और आकाश के बादल, पीछे आकाश जो है वो कुछ नहीं, बोले मुझे केवल लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है। जब तक हमारा वैसा नहीं होता है ना, तब तक हमको भगवान की प्राप्ति होना बहुत मुश्किल है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी दिख रहा है, वो भी मोहित कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो नहीं होता है। तो बगुला बन गया, जैसे ही वो सुंदर राक्षस का शरीर था उसका, वो बगुला बन गया तो भी उसको एकदम अहंकार चूर हो गया उसका। तो महाराज के चरणों में गिरा, बोला महाराज जी कुछ करो, बचाओ हमको। उन्होंने कहा कि जब द्वापर में वैवस्वत मनु के राज्य में जब 28वें द्वापर में जब श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब वो आपका उद्धार करेंगे। इसीलिए एक और भी प्रश्न था कि इतने सारे देवताओं से कैसे नहीं वध हुआ उसका, क्योंकि उसको कृष्ण के द्वारा उद्धार होने का वरदान मिला था। इसलिए इतना सब बल होने के बाद भी सब देवता आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे नहीं मर रहा है ये, क्योंकि उसको वरदान था। इसका मतलब क्या हुआ, साधु का वरदान देवताओं के बल से भी भारी होता है। देवता भी जब हम देवताओं से पूजा करते हैं ना, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, स्वर्गवास चाहिए, अप्सराओं का सुख चाहिए, सोमरस का पान करना है, नंदनवन में घूमना है, तो वो एक प्रकार का वरदान होता है। लेकिन साधु का वरदान जो होता है वो आत्मा के कल्याण के लिए होता है, देवताओं का वरदान जो होता है वो शरीर के भोग के लिए होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि देवताओं का कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए। वो सब भगवान के भक्त हैं लेकिन उनके अंदर मोक्ष देने की शक्ति नहीं है, उनके अंदर कृष्ण प्रेम देने की शक्ति नहीं है। केवल शंकर जी ऐसे, विशेष गणेश जी ऐसे, दो तीन ही देवता हैं जो आपको कृष्ण भक्ति दे सकते हैं, बाकी सब तो हमको भौतिक प्राप्ति करा सकते हैं। आप देखते हैं कि देवता जो सब जीवों को वरदान देते हैं, जिनका वरदान हम सब चाहते हैं, वो अपना सर्वशक्ति लेकर आघात कर रहे हैं, लेकिन एक साधु ने दिया हुआ जो वरदान है उसको काट नहीं सके वो। मतलब क्या हुआ, साधु ने दिया हुआ वरदान का काटने का मतलब क्या है कि वो उनके शस्त्र से मरता था ना वो, लेकिन मर नहीं पाया वो। उनको भी आश्चर्य हुआ कैसे कैसे हुआ, क्योंकि साधु जो है भगवान के भक्त होते हैं, उनका वचन पूर्ति करने के लिए भगवान स्वयं प्रयत्न करते हैं। जब भीष्मदेव ने वचन दे लिया कि मैं कल के दिन ऐसा युद्ध करूंगा कि भगवान को शस्त्र देने के लिए मजबूर करूंगा, भगवान शस्त्र उठाएंगे, उन्होंने प्रण लिया कि मैं इस युद्ध में महाभारत के शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने भी अपना वचन लिया ना, भगवान ने ऐलान कर दिया, एक प्रॉमिस कर दिया कि नहीं उठाऊंगा। और भीष्मदेव दुर्योधन के उकसाने के बाद में इतना बोलते हैं, वो कहते थे आपको तो युद्ध करना नहीं आता है, आप तो कमजोर हो, प्रेम के वश, माया के वश कमजोर हो, आपके अंदर कोई शक्ति नहीं है, आप पांडवों को नहीं मार सकते तो कैसे मुझे जिताएंगे, आप कैसे भरोसा करूं आपके ऊपर, ऐसे बहुत वीर का जो था ना अहंकार, उसको वो चूर कर देते हैं अपनी बातों बातों में, उसको उनको इंस्टिगेट करते हैं। तो वो फिर वो तिलमिला कर बोलते हैं कि कल मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि इतना त्रस्त करूंगा पांडवों को कि कृष्ण को शस्त्र उठाने में मजबूर करूंगा। और हकीकत में इतना भयंकर युद्ध करते हैं वो, तो कृष्ण भगवान नीचे कूदते हैं रथ के क्रोधित होकर, और टूटा हुआ चक्र उठाकर चक्र की तरह घुमाने लगते हैं और हवा की गति से भीष्म की ओर बढ़ते हैं, और उसी पीछे अर्जुन कूदकर उनकी झंगा को पकड़ के खींचता है, नहीं नहीं भगवान आपने वादा किया है कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन भगवान को कहां परवाह है, अपने भक्त का दिया हुआ जो वादा है, मतलब क्या कहते हैं उसको, वचन यानी कि प्रतिज्ञा जो है, उसको रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए वो तैयार है। उतना तक वो भक्त का शब्द का वचन का कीमत रखना चाहते हैं, ही वांट्स टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द वर्ड्स ऑफ डिवोटीज। इतना तक भगवान भक्त के शब्द को मना रखने के लिए प्रयास करते हैं। तो साधु मुनि ने दिया वो आशीर्वाद है ना वो, कि तुम्हारा बगुला बनने के बाद में मेरे हाथों उद्धार होगा, तो कोई भी देवता उसको काट नहीं सकता, स्वयं भगवान ने अपने हाथों से उसका उद्धार किया। और उसका मतलब क्या होता है, जब कोई भगवान के हाथ से मरता है या भगवान के आंखों के सामने मरता है, भगवान की उपस्थिति में मरता है, उसको मुक्ति प्राप्त होती है। और इस मुक्ति मुक्ति में अंतर है। हमने आपको कल सुनाया ना कि विमल राजा कामे, उन्होंने सुनाया था इन लोगों को कि विमल राजा जो थे वो यज्ञ कर रहे थे, कृष्ण भगवान आए, उनकी करोड़ों कन्याओं का उन्होंने विवाह किया, तो ऐसा वर्णन नहीं आता है कि विमल राजा के शरीर से एक जोत निकली और कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर दिया उसने, ऐसा नहीं निकला। वर्णन ऐसे आता है कि वैकुंठ से गरुड़ जी अपने गरुड़ विमान को लेकर आए और गरुड़ जी के पीठ पर बैठ कर विष्णु देह प्राप्त करके, विष्णु दूत बनकर वैकुंठ देह प्राप्त करके वो वैकुंठ में चले गए। तो उसमें कुछ अंतर है कि नहीं? ज्योति बनकर भगवान से एक रूप होना, उसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। और विष्णु रूप सारूप्य यानी कि भगवान जैसा रूप प्राप्त करके वैकुंठ में जाके रहना, इसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं। भगवान के लोक में रहना, इसको सालोक्य मुक्ति कहते हैं। भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करके रहना, इसको सारष्टि कहते हैं। तो सारूप्य, सारष्टि, सालोक्य, सामिप्य, हाँ, भगवान के निकट रहना, एकदम पास में रहना, जहाँ भगवान है वहां पर रहना, सामिप्य, ये चार प्रकार की मुक्ति जो है वो थोड़ी सी अच्छी मानी गई है, ओके एटलीस्ट। लेकिन सायुज्य मुक्ति जो है वो इतनी श्रेष्ठ नहीं मानी गई है, क्योंकि भक्त जो है भगवान से एक रूप होना चाहता नहीं है, वो हमेशा जुदा रहकर भगवान की सेवा करना चाहता है। एक रूप होने से क्या सेवा करेंगे? दो रहेंगे तो सेवा कर सकते हैं दूसरे की। लेकिन जो भक्त होता है भगवान का, वो ना सायुज्य चाहता है, ना सारष्टी, ना सारूप्य, ना सामुप्य, ना सालोक्य, कुछ भी चाहता नहीं है। जैसे कहते हैं जो भक्त होता है उसके पीछे भुक्ति यानी कि भोग जीवन के, मुक्ति यानी कि पांचों प्रकार की मुक्तियां हाथ जोड़कर भागती रहती है, पीछा करती है उनके, वो उनके ओर मुड़के भी दिखता नहीं। और दुनिया जो है सब मुक्ति और भुक्ति के पीछे भागती रहती है, और मुक्ति और भुक्ति उनसे दूर भागती रहती है। हम लोग सब मुक्ति और भुक्ति का प्रयास करते हैं, भोग लेने का, लेकिन भोग भी हमसे दूर भागता है और मुक्ति भी हमको प्राप्त नहीं होती, दर्शन भी नहीं होता है। और एक भक्त ऐसा है कि जिसके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए भुक्ति देवी और मुक्ति देवी और सिद्धि देवी, तीनों सिद्धि भी भागते रहते हैं उनके पीछे पीछे, और उनको कोई अभिलाषा नहीं उनकी। कैसा विरोधाभास है देखो, हाउ इज द कॉन्ट्राडिक्शन। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, ऐसा चैतन्य चैतन्य ने वर्णन दिया है कि भुक्ति कामी जो भोग चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होना चाहते हैं, और जो योग करके सिद्ध बनना चाहते हैं, कोई पावर इकट्ठा करना चाहते हैं, तीनों लोग इन तीन कामनाओं की वजह से अशांत ही रहते हैं हमेशा, तो संतुष्ट नहीं होती उनकी। लेकिन भक्त जो होता है कृष्ण भक्त निष्काम, उसमें ना कोई भोग की इच्छा होती है, ना मुक्ति की इच्छा होती है, ना कोई सिद्धि की इच्छा होती है, वो केवल कृष्ण के चरण चाहते हैं, केवल उनकी सेवा चाहते हैं, अतएव शांत, इसीलिए वो शांत रहते हैं हमेशा। तो हमको अगर जीवन के उद्वेग से शांति प्राप्त करनी है तो कृष्ण की भक्ति निष्काम भावना से करनी होगी। क्या भक्ति की व्याख्या की गई है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, हाँ, अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलदम भक्तिरुत्तमा। जब किसी भी अन्य अभिलाषा जो भगवान के लिए अनुकूल नहीं है, जो भगवान के लिए नहीं है, उनके तुष्टि के लिए नहीं है, वो सब अभिलाषा वो छोड़ देते हैं, उससे शून्य हो जाते हैं। और ज्ञान का और कर्म का एक प्रभाव होता है, ज्ञान से मुक्ति की अभिलाषा उत्पन्न होती है और कर्म से कर्म फल की अभिलाषा वो उत्पन्न होती है। तो ना ज्ञान कर्मादि अनावृत, मतलब ज्ञान और कर्म के प्रभाव से वो अनावृत, मतलब फ्री हो जाता है, उसका प्रभाव जो है उससे जो आवृत्ति है उससे मुक्त हो जाता है। और ये ऐसे स्थिति में अन्य अभिलाषा शून्य होकर, ज्ञान के प्रभाव से मुक्ति पाने की इच्छा से मुक्त होकर, कर्म के प्रभाव से कर्म फल पाने की इच्छा से मुक्त होकर, वो क्या करता है? अनुकूल्येन, अनुकूल भावना से कृष्ण का अनुशीलन करता है, मतलब उनको प्रसन्न करने का प्रयास करता है, ऐसे कार्य करता है जो उनको रिझाए। जब वो ऐसे कार्य करता है अपने इंद्रियों को साथ में लेकर, केवल अनुकूल भावना से कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, तो उसको उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। और प्रतिकूल क्या उदाहरण क्या है? कंस, जो कंस था वो भी कृष्ण का दिन भर ध्यान करता था, ऐसा एक ही एक भी क्षण नहीं था जीवन में उसके जब कृष्ण का ध्यान उसके मन में नहीं था। He was haunted with Krishna। दिन रात उसको पानी में, ग्लास में, आईने में, इधर उधर सब जगह पर कृष्ण दिखाई पड़ता था, लेकिन शत्रु की तरह, इष्ट की तरह नहीं, शत्रु की तरह, भय से या दुश्मनी से या वैर से उसको कृष्ण का ध्यान था, कृष्ण की स्मृति थी। तो वो प्रतिकूल है, उससे भक्ति नहीं प्राप्त होती, उसका वध हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। तो इसलिए साधु का आश्रय बहुत जरूरी है। कितने भी बड़े पढ़े लिखे होंगे, साधु का आश्रय बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने अपने हृदय में कृष्ण को बसा लिया है पूरी तरह से, अनुभूति के साथ। विदुर जी कहते हैं भागवत में, मैत्रेय मुनि को बताते हैं, तीर्थी तीर्थंती कुर्वंती तीर्थाणी, आप तो स्वयं तीर्थ हैं, स्वयं धाम है, क्योंकि आपके अंदर पूरी तरह से कृष्ण भगवान का साक्षात्कार हुआ है और आप उनको हृदय में पूरी अनुभूति के साथ लेकर चलते हैं, इसलिए आपके चरणों में सब धाम है, सब तीर्थ हैं। ऐसे व्यक्ति का आश्रय ग्रहण करने से कृष्ण की प्राप्ति होती है। और बाकी हम कितना भी साधन करेंगे, तपस्या करेंगे, जंगल में जाएंगे, योग करेंगे, तो ऐसे कहा गया है कि ऐसे ध्यानियों को, योगियों को, ज्ञानियों को, कर्मकांडियों को जन्म जन्मांतर तक हजारों जन्म के बाद भी कृष्ण के चरणों से, नाखूनों से निकलने वाले अनंत किरणों से एक किरण भी दर्शन नहीं होता है, तो क्या फायदा ऐसे भजन करने से। और यहाँ के गोपियां जो है वो कहते हैं कि अपने बालों के लटकन में उनको बांध के घूमते रहते हैं। प्रेम के वश जो परब्रह्म है, जिसकी प्राप्ति के लिए योग तपस्या कर रहे हैं, योगी योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, क्या क्या त्याग कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, नदी में स्नान कर रहे हैं, कितनी तपस्या कर रहे हैं, विरक्ति कर रहे हैं, उनको वो दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। और ये जो गोपियां हैं गांव की, सो कॉल्ड तथा कथित जो गंवार औरतें हैं, वो तालियां बजाती हैं और परब्रह्म नाचते हैं उनके लिए, बोले नाचो, बोले माखन चाहिए, बोले नाचो, अच्छा ठुमके नाचो, फिर हम माखन देंगे आपको। फिर वो नाचते हैं, फिर थोड़ा माखन खिलाते हैं, बोले और दो, और नाचना होगा, हम ताली बजाएंगे अलग ताल में, आप नाचो, और ठुमक ठुमक के नाचते हैं वो, मतलब वो गुलाम बन जाते हैं भक्ति के, भक्त अपने भक्त के। तो हमें देखना यह है कि हमको ना सिद्धि प्राप्त करनी है, ना राज्य प्राप्त करना है, ना अधिकार प्राप्त करना है, ना हमको कर्म का फल चाहिए, ना हमको ज्ञान का फल के रूप में मुक्ति चाहिए, ना हमको कुछ भी चाहिए, हमको केवल भगवान चाहिए बस। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, ना जग का राज्य चाहिए, ना स्तुति चाहिए, ना धन चाहिए, ना स्त्री का आनंद चाहिए, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मतलब क्या, जन्म जन्मांतर तक, मतलब मोक्ष भी नहीं चाहिए, है ना, जन्म अगर अनेक होंगे तो मोक्ष कहाँ होगा। तो कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक मुझे आपकी अहेतु की भक्ति प्राप्त होती रही, यही मेरी एकमात्र तमन्ना है। और मैंने पहले वहां बताया आपको चंपकलंदा के गाँव में अप्रतिहता, जिसमें बाधा भी नहीं है, हेतु भी नहीं है और बाधा भी नहीं है, कंटिन्यूअस है वो, विदाउट स्टॉप, ऐसी भक्ति चाहिए मुझे। और ऐसी भक्ति करने वाले के भगवान अपने आप को उसको अर्पण कर देते हैं। अश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम, आप मुझे अपना लो, गले लगा लो, प्यार करो, चाहे ठुकरा हो, पास बुलाओ, धूर भगाओ, गले लगा दो, आलिंगन दे दो, अपना बना लो, दूर कर दो, ठुकरा दो, कुचल दो। पिनष्टु माम का मतलब क्या है, कुचल दो, आप मुझे कुचल भी सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं, जो आपको मन में मर्जी है मुझसे व्यवहार का आप कर सकते हो, लेकिन मत प्राण नाथस्तु स एव नापरः, मैं आपका हमेशा दास बना रहूंगा और आप मेरे आराध्य प्राणेश्वर बने रहेंगे। ये भक्त की स्थिति है, ऐसे भक्त के लिए भगवान अपने आप को बेच देते हैं, इसलिए गोपियां उनको नचा सके और गोपियों के इशारे पर भगवान नाच सके। भगवान एकदम विवल हो जाते हैं जब गोपियां कहती हैं कि हम नहीं मिलेंगे आपसे, एकदम बात नहीं करेंगे, तक बाल बाल कहते आपको खेलने में नहीं लेंगे कल, आप एकदम आयन मौके पे माता जी का बहाना करके जाने में कोशिश कर रहे हैं, है ना, जब कभी कभी खेल में हारते हैं ना तो माता जी बुलाने आते, चलो भोजन का समय हो गया है, तो हाँ माता जी आ रहा हूँ आ रहा हूँ, तो कहते हैं अच्छा अभी खेलने में हार रहे हैं तो हम माता जी का बहाना करके खाने जा रहे हो, कल खेलने में नहीं लेंगे आपको। तो वो जो है वो कृष्ण को बड़ी धमकी लगती है कि मुझे कल खेलने में नहीं लेंगे ये, तो माता के आज्ञा को ठुकरा कर फिर दोबारा खेलने में आते हैं, हार जाते हैं, फिर खाना खाने जाते हैं, क्योंकि उनको खेलना है उनको अगली बार। अरे क्या कहें उनके, ब्रह्मा जैसे देवता जो बीच में आते हैं, कभी बाल बालों को हरण कर लेते हैं, फिर पछताते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, तो भगवान को प्रार्थना सुननी पड़ती है, लेकिन भगवान किसी और जगह बताते हैं कि ये देवता लोग अपने अपने तरफ से गुस्सा के करते हैं, फिर वो पछताते हैं, फिर पछताने के बाद प्रार्थना करते हैं, और मुझे खड़ा रह के सुनना पड़ता है सब कुछ, लेकिन मेरा मन जो है वो मेरे ग्वाल बालों को खेल में लगा रहता है कि कब ये प्रार्थना खत्म होगी और कब मैं खेलने जाऊंगा। लेकिन क्या करें, ब्रह्मा जी भी प्रार्थना कर रहे हैं भाई पछतावा करके, वो भी उनको अच्छा लगता है तो सुन रहे हैं, लेकिन उससे भी अधिक उनके द्वारा की गई सुसंस्कृत प्रार्थना से भी अधिक उनको ग्वाल बालों की गालियां अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि मैं वैकुंठ छोड़ के क्यों आया, वैकुंठ में वेद रुचाएं जो है, श्रुतियां जो है, मुझे अच्छे अच्छे गिने चुने शब्दों में, श्लोकों में मेरा वंदन गौरव करती है, लेकिन मैं वो सब कुछ गौरव छोड़कर, प्रार्थनाएं छोड़कर मैं ब्रज में आया हूँ ब्रजवासियों की गाली खाने के लिए, क्योंकि मुझे वो वेद के प्रार्थनाओं से भी अधिक मीठी लगती है। ये प्रेम का प्रभाव, तो उसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। हमको वो प्रेम चाहिए, ये नहीं कि ठाकुर जी को हमको अपने वश में करना है, वो भाव नहीं है, लेकिन ठाकुर जी का दिल हम जीत लें हमारे लिए, कम से कम हम उनके चरणों में रहे, वो हमें अपना बना लें, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और करना चाहिए। उसके लिए भगवान के नाम का जप करना चाहिए, नियमित रूप से प्रेम से पुकारना चाहिए, अपने आप को समर्पित करके पुकारना चाहिए, और अगर नहीं पुकारना हो रहा है तो उनको वो पुकारने की शक्ति मिलनी चाहिए, इसलिए प्रार्थना भी करनी चाहिए, प्लीज हेल्प मी टू चैंट योर नेम। मैं नाम में जप करता हूँ तो मेरा मन यहाँ वहाँ भटकता है, कृपा करके मेरे नाम में जप करते हुए आप मुझे एकाग्रता का वरदान दो, ताकि मेरा मन लगे आपके नाम में, तो दुनिया भर में लगा हुआ है सब मन जो है वो हटा दो और आपके चरणों में लगाने के लिए आप मुझे हेल्प कीजिए। ये प्रार्थना करने के लिए हम यहाँ पर आए। इस भूमि में वो शक्ति है, इस रज में शक्ति है, इस धाम में वो शक्ति है, यहाँ की सेवाओं में वो पावर है जो आपको ऐसी कृपा मिल सकती है, वो प्रार्थना कीजिए आप लोग। और ऐसी प्रार्थना कीजिए कि हम बकासुर कभी ना बने, भगवान को कभी भी कष्ट मत दो, भगवान के भक्तों को कभी कष्ट न दें, और हमेशा भगवान के भक्तों की सेवा करते रहें, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते रहें। तो ये माधव सरोवर है, इसी के किनारे बकासुर आया था, यहाँ पर ये बकासुर का वध हुआ था, और भगवान ने फिर आनंद किया था, सब लोग ने बैठ कर यहाँ पर भोजन किया था और फिर घर चले गए थे। हम भी यहाँ से जाएंगे, भोजन करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, श्री कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन धाम की।